चीज़ों के जरिए से अल्लाह पाक शादी को भी माना बनाते हैं। और दूसरी बात के इलाकों में जाकर उस बस्ती वालों पर मेहनत कैसे की जाए कि वो बस्ती में दीनदार बनने की फिक्र आ जाए, दीन वाला बनने की फिक्र आ जाए। और ये इसलिए करना है कि हर मुसलमान के जिम्मे ये जिम्मेदारी है कि अपने लिए जो चीज़ पसंद करेगा वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। वरना अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम से कोई आदमी करना नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो हम जो चीज़ अपने लिए पसंद करेंगे वो अपने भाइयों के लिए और अपने बहनों के लिए भी पसंद करेंगे। इसलिए जब जमातें होती हैं तो मोहल्ले वालों से इख्तलात करते हैं, मोहल्ले वालों के साथ बातचीत करना होती है। और ये क्यों होता है अज़ीज़ा बहनों? बात बुनियादी ये है कि ये हम सब की बुनियादी और ज़रूरत की चीज़ है कि इस दुनिया में मुसलमान अल्लाह का पाबंद बनकर ज़िंदगी गुजारे। इस दुनिया में अल्लाह पाक ने ईमान वालों को भी बनाया है और गैर ईमान वाले भी इस दुनिया में हैं, लेकिन ईमान वालों के जीने में और गैर ईमान वालों के जीने में बुनियादी फ़र्क है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया को बेईमानों के लिए जन्नत बनाई है, दुनिया सिद्दुल्मुमिन व जन्नतुल काफिर, के काफिरों के लिए अल्लाह ने इस दुनिया को जन्नत बनाया है और ईमान वालों के लिए ये दुनिया कैदखाना है। क्या मतलब इसका? कैदखाने का मतलब ये है कि यहाँ जी की चाहतें पूरी नहीं होती, ख्वाहिशें यहाँ पूरी नहीं होती। ख्वाहिशें पूरा करने की जगह, जी की चाहतों को पूरा करने की जगह अल्लाह पाक ने मरने के बाद हमें रखी है। अब एक ईमान वाला अगर समझदार बनकर समझदारी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेगा तो गैर महसूस तरीके से उसकी ज़िंदगी गैरों के मुशाबे हो जाएगी। उसके सोच, उसके जज्बात, उसके फिक्रें, उसका रहन सहन, उसका अपना इस्तेमाल गैर महसूस तरीके से गैरों से खड़ा हो जाएगा। और खुदा न करे अगर ऐसा हो गया तो फिर बस उसका उसकी दुनिया खराब हो जाएगी। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो भी हमारी इताअत और फरमाबरदारी से हटकर हमारे इस्तेहज़ा के बगैर की ज़िंदगी गुजारेगा उसकी ज़िंदगियों को हम अजीरन कर देंगे। इसका मतलब कि हम उसकी ज़िंदगी में मसाइल को भर देंगे। मन आरिक्री फ़ैन लहू शन का अल्लाह कह रहे हैं जो बात नहीं समझेगा, जो बात नहीं मानेगा कोई बात नहीं, हम उसके जीने में मसाइल दुनिया भर के भर देंगे। इसीलिए अल्लाह पुराना फरमाते हैं कि जिनको भी छोटे बड़े मसले हैं, छोटे बड़े जिसको जो मसाइल हैं, वो इस बात का इस्तेहज़ार करें कि उनके अल्लाह ने उनको उनके ऊपर जुल्म नहीं किया है। ये खुद अपने हाथों से ऐसी हरकतें करके बैठे हैं कि उनके ऊपर ये हालात आए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वरमा रब्बुकल्लामिल्लाबी के बंदों से कहो कि तुम्हारा रब किसी बंदों पर ज़ालिम नहीं है, किसी बंदों पर जुल्म नहीं करता। तो ये जो तुम्हारे हालात ख़राब हुए हैं वो तुम्हारे हाथों के करतूत है। बेमा कसबत अयदीकुम, ऐ लोगों ये तुम्हारे हाथों में जो कमाया है उसके करतूत का बदला है। और एक जगह फरमाया बेमा कसबत अयदीन्नास के लोगों ने जो किया वो इसका बदला भुगत रहे हैं। बस चीज़ें हम करके भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं होती, और बस चीज़ें करने की हम नहीं करते हैं, बस करने की चीज़ें नहीं करते और बस नहीं करने की चीज़ें हम करते हैं। नहीं करने की चीज़ें करना वो भी गलत, करने की चीज़ें नहीं करना वो भी गलत। करने की चीज़ें नहीं की जाएगी तो भी अल्लाह की तरफ से ईमान वालों को पूछा जाएगा, और नहीं करने की गई तो भी बुरा होगा। हाँ, इसलिए जिसके भी इनफरादी या इज्तिमाई जो कुछ भी मसाइल हैं वो इसका इस्तेहज़ार करें, घरेलू हो, ख़ानदानी हो, इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, जो भी छोटा बड़ा मसला हो इसका इस्तेहज़ार करें, इसका एहसास करें कि मेरे अल्लाह मेरे ऊपर सालिम नहीं है, मेरी कुछ ऐसी हरकतें हुई है जिस हरकतों की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये कहना सुनना इसीलिए होता है, ये समझना समझाना इसलिए होता है, हर आदमी चौकन्न ना हो जाए, देखा देखी की जिंदगी ना गुजारे, गफलत वाली जिंदगी ना गुजारे, लाओ वाली बन की जिंदगी ना गुजारे, बेफिक्री की जिंदगी ना गुजारे। वरना अगर उसने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं की तो उसका हर कदम या तो मुसीबतों को इस्तकबाल करेगा, मुसीबतों को दावत देगा, या उसका हर कदम, हर फैसला, हर बात खुशी को, अल्लाह की मदद को, अल्लाह की नुसरत को दावत देने वाला होगा। अगर वो ऐसा रहे उसके सुबह से शाम तक के अमाल में उसका अपना इस्तेमाल कि जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं, तो हर घड़ी उसकी अल्लाह की नुसरतों को साथ करने वाली है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो बात समझते हैं, बात मानते हैं, पाबंद बनते हैं, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं हम उनको खुशगवार ज़िंदगी देंगे। मन आमिल सालिहन मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, कि जो बात समझेगा और जो समझकर पाबंद बनकर ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम उनको खुशगवार ज़िंदगी देंगे। फिर जब अल्लाह खुशगवार ज़िंदगी देंगे तो अल्लाह जानते हैं कि हमारी खुशगवारी किसमें है। अगर हमारे पास घर नहीं है तो अल्लाह घर का इंतजाम करेंगे, अगर हमारे घर की ज़रूरत होगी। अगर हमें औलाद की ज़रूरत है तो अल्लाह औलाद देंगे। अगर औलाद है उसमें फरमाबरदारी नहीं है तो अल्लाह उसमें फरमाबरदारियों को भरेंगे। कारोबार नहीं है, अल्लाह कारोबार की शक्लें बनाएंगे। और अगर कारोबार है और उसमें बरकत की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अल्लाह जानते हैं बंदों को किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ही उन चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे और उन चीज़ों में हमारे लिए राहत को भरेंगे। हाँ, अल्लाह कुरान फरमाते हैं हम उनके लिए खुशगवार ज़िंदगी भर देंगे। ये हर हफ्ते जो जमा होना होता है और कहना सुनना होता है, समझना समझना होता है, वो इसी बुनियादों पर कि ईमान वाला चौकन्ना बनकर ज़िंदगी गुजारने वाला बने, ये गफलत ना करे, ये सुस्ती ना करे, ये देखा देखे ज़िंदगी ना गुजारे, वरना ये पकड़ा जाएगा। हाँ, किताब में आता है कि ये ईमान जो है वो तो जो करेगा करेगा, उसको कोई मसला नहीं है। हाँ, बस एक बात है, वो जुल्म ना करे, क्योंकि जुल्म अगर वो करेगा तो जुल्म तो कोई किसी का नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह इस ज़मीन पर कुफ्र को बर्दाश्त करते हैं, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। काफिरों को अल्लाह पाक सत्ता देते हैं और काफिरों को अल्लाह ढील देते हैं। हुजूर के ज़माने में काफिर लंबे ज़माने तक रहे, जब उन्होंने जुल्म शुरू किया फिर अल्लाह ने पकड़ लिया। फिरौन लंबे ज़माने तक रहा, अब फिरौन खुदाई का दावा कर रहा, अल्लाह ने उसको ढील दे दी, तो लंबे ज़माने तक उसको ढील दिया। लेकिन जब उसने बनी इसराइलियों पर जुल्म शुरू किया फिर अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। कला पर कुफ्र करने वालों को ढील दे देते हैं, लेकिन जुल्म वालों को ढील नहीं देते, उनको पकड़ लेते हैं। तो काफिरों को अल्लाह पर कुफ्र के बाद निभा नहीं गए। हाँ, वो जुल्म करेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन ईमान वाला ये अल्लाह की ज़मीन पर रहता है, अल्लाह ही की ज़मीन पर वो अपने आप को जला रहा है, अगर इसने अल्लाह की नाफरमानी की है तो ईमान वाले में और इसमें फ़र्क है। इसकी नाफरमानी करने को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका कोई गलत बात करने को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर देंगे, मसाइल से भर देंगे। इसीलिए नबियों ने इंसानों को समझाया है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। और अंबिया की इस मेहनत के रास्ते से, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएंगे तो ख़त्म नबूवत की मेहनत के रास्ते से इसी बात को समझना और समझाना होता है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया गफलत की जगह है, हम चाहें न चाहें इसमें गैर महसूस तरीके से गफलत और सुस्ती हो ही जाती है। और ऐसी गफलत और सुस्ती होती है कि करने के काम रह जाते हैं, न करने के काम शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह नाराज़ होकर जब हालात ख़राब करते हैं तो आदमी सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, सर पर हाथ रखकर बैठता है कि मेरे क्यों हालात ऐसे हो गए, कि अल्लाह ने नहीं किए हैं, ये हमने इसको दावत दी है, हमने ऐसी हरकतें की है। हाँ, इसीलिए ये बात समझना और समझाना होता है, एक आदमी ईमान वाला चौकन्ना ना होकर ज़िंदगी गुजारे। इसकी हर चीज़ का असर पड़ेगा, हर चीज़ का असर, इसकी नीयत का भी असर पड़ता है, इसके अमल का भी असर पड़ता है। हजरत ने वाक़या लिखा अमल का, एक आदमी के घर में औलाद नहीं थी, उन्होंने एक बच्चे को दत्तक ले लिया, ले पालक बनाया, गोद ले लिया, घोड़े ले लिया, छोटा सा बच्चा, वो जवान हुआ, कितने साल, 15-20 साल उस घर में रहा, जवान हो गया। एक मतलब वो घर में आया जवान, और गलत नीयत से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, जिसने उसको आज तक पाला पोसा परवान चढ़ाया, गलत नीयत से हाथ पकड़ लिया, वो माँ रोने लगी कि ये मेरे बेटा जिसको मैंने इतना पाला पोसा परवान चढ़ाया पढ़ा किया 15-20 साल उसके ऊपर लगाए और ये गलत नीयत से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो माँ रो रही है, इतने में हाजी साहब घर में आ गए तो हाजी साहब ने पूछा कि हजन क्यों रो रही है। उन्होंने सुनाया कि ये बच्चा ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है जिसको हमने इतना परवान चढ़ाया है। तो इतना सुनते ही हाजी साहब रोने लगे। तो हजन ने पूछा, हाजी साहब आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कि मसला इस लड़के का नहीं है, कफेर का मसला मेरा है। आपका क्या मसला है? मेरा मसला ये है कि हमारी दुकान पर आज एक खातून आई थी चूड़ियां खरीदने के लिए, तो मैंने गलत नियत से चूड़ी पहनाने के बहाने से उसका हाथ पकड़ लिया था, कि चूड़ी पहनाने के बहाने से मैंने गलत नियत कर ली। उसकी वो हरकत का असर एकदम घर में पड़ गया। अल्लाह के वहां निजाम चलता है। अरबी में कहावत है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, कमा तदीनो तदानो। अरे लोगो, तुम जैसा करोगे ऐसा तुम्हें भुगतना है। आज तक वो बच्चा घर में रहता था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसने ये हरकत की तो उसके घर में हरकत पैदा हो गई। वो उसने काम वहां बाजार में किया है, जितना किया इतना ही करने का निजाम घर में बन गया, वरना आज तक ये बच्चा घर में था कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अल्लाह पाक इंसानों की हरकत का बदला देते हैं, उसके जज्बात का, उसकी बातों का, उसकी सोच का, उसका अपने इस्तेमाल का। हाँ, इसलिए आदमी अंधेरे में ना रहे कि अगर किसी मर्द ने कोई हरकत की, कोई औरत ने कोई हरकत की, अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात की, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया, अल्लाह को नाराज़ करने वाली कोई चीज़ की, तो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं देखा। ऐसा नहीं है, अल्लाह हर चीज़ को देख रहे हैं और अल्लाह उसका बदला देंगे। दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह की निगाह से ओझल नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह की निगाह से दूर नहीं है। सारी चीज़ों पर अल्लाह का कंट्रोल है, अल्लाह के कब्जे में है सारी चीज़ें। हाँ, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लोगों से बात कहो, अला लहुल खल्क वल अम्र, कि लोगों से बात कहो कि लोगों, दुनिया हमारी है और इस दुनिया पर कंट्रोल भी हमारा है, दुनिया पर कंट्रोल भी अल्लाह का है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि हम नहीं ऐसा कर लें, कोई आदमी ये चाहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लें, तो किसी की नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी। देखो, ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जब चाहे इसको हिला दें, कोई आदमी इसकी हिलने को रोक नहीं सकता, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, धरती कंप जाती है। अल्लाह बारिश बरसा दे, अगर अल्लाह कंट्रोल ना करें तो कोई बारिश को रोक नहीं सकता। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि पूरे पूरे शहर डूब जाते हैं, और सुनामी आती है तो पूरे शहर को लेकर चला जाता है, कि बारिश के ऊपर लगाम अल्लाह की है, हवा पर लगाम अल्लाह की है। अल्लाह अगर अल्लाह हवा भेज दें तो अल्लाह तूफान भेज दें, पूरी पूरी बस्तियों को उखाड़ देते हैं। सूरज पर लगाम अल्लाह की है, अगर अल्लाह तेज सूरज कर दें, गर्मी बरसा दें, गर्मी को उतारें अल्लाह पर, तो आदमी तपिश से मर जाता है। ठंडी पर लगाम अल्लाह की है, अगर अल्लाह तेज ठंडी भेज दें तो आदमी मर जाएगा। ये सारी चीजें हम अल्लाह की मखलूक है, तो इस सारी मखलूक पर लगाम अल्लाह की है। जैसे इन सारे मखलूक पर लगाम अल्लाह की है, ऐसे हम जितने भी हैं हम भी सारे अल्लाह के मखलूक हैं। हमारे जितने असबाब हैं वो भी सारे अल्लाह के मखलूक हैं, उसमें भी हमारी नहीं चलती, हमारे अल्लाह की चलती है। हाँ, हमारे बच्चों पर हमारी नहीं चलती। आप देखो, एक बच्चे को हम पालते हैं, पोसते हैं, परवान चढ़ाते हैं और जवान होता है और हमारी नहीं चलती। अगर हमारी उस बच्चे पर चलती तो बच्चे को ऐसे जीते जैसे हम चाहते, लेकिन ऐसे नहीं जी रहे जैसे हम चाहते। हमारे बच्चे बच्चियाँ हमारे नाफरमान क्यों हो जाते हैं? हालांकि 20 साल हमने उन पर मेहनत की है, अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज मदरसे में भेजा, अच्छे मदरसे में भेजा, अच्छे स्कूल में स्कूल भेजा, घर में तालीम के हल्कों में बिठाया, फिर ये बच्चा आवारा कैसे हो गया, नाफरमान कैसे हो गया? ये नहीं हुआ है, उन माँ बापों की कुछ गलतियों की वजह से अल्लाह पाक ने इन बच्चों को आवारा कर दिया। ये बच्चियाँ ऐसी क्यों हो गई? ये बच्चियाँ नहीं हुई है, अल्लाह की तरफ से ये अजाब हो गया। अजाब सगे भाई बहन होते हैं, सगा भाई सगी बहने एक माँ की गोद में खेले हैं, एक माँ के गोद में खाना खाया है। अब सगा भाई सगे भाई से कह रहा है कि मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता, तू मेरे जनाजे में मत आना। सगी बहन बहन की दुश्मन हो जाती है, सगा भाई बहन का दुश्मन हो जाता है, और सगा भाई बहन से कहता है मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता, तो मेरे जनाजे में मत आना। ये क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, 50 साल तक उनके अंदर मोहब्बत थी और एकदम अल्लाह की तरफ से उनके दिलों को फाड़ दिया गया। ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह पर दिलों को फाड़ते हैं, दिलों में मोहब्बत और दिलों में दुश्मनी अल्लाह की तरफ से आती है। आन की आन में अल्लाह सब करते हैं। ये जितने भी घरों में मसाइल हैं, सगे भाइयों के, सगी बहनों के, भाई बहन के, जिसके जो भी मसाइल है, किताबों में आता है कि अल्लाह पर किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह आसमान पर ऐलान करते हैं कि जिब्राइल मैंने फला बंदे से मोहब्बत की, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों से कहते हैं कि आसमान के फरिश्तों अल्लाह ने उससे मोहब्बत करते हैं और आसमान के फरिश्ते मैं भी मोहब्बत करता हूँ, आसमान के फरिश्तों तुम भी इनसे मोहब्बत करो। फिर ऐलान करो जमीन वालों में कि आसमान के सारी मखलूक इनसे मोहब्बत करती है, ऐ जमीन वालों तुम भी इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह पाक इन सबसे मोहब्बत करो, अल्लाह के सारी मखलूक इनसे मोहब्बत करो। और जब कोई बंदा अल्लाह की निगाह से गिरता है तो आसमानों पर उसका ऐलान होता है, अल्लाह ऐलान करते हैं जिब्राइल मैं फला बंदे को बुरा समझता हूँ, तुम भी इससे दुश्मनी करो। तो जिब्राइल भी ऐलान करते हैं कि फरिश्तों मैं भी इनसे दुश्मनी करता हूँ, अल्लाह और मैं दोनों दुश्मनी करता हूँ, ऐ फरिश्तों तुम भी दुश्मनी कर दो। फिर आसमान के फरिश्ते दुश्मनी करते हैं, फिर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों का ऐलान होता है कई ज़मीन वालों अल्लाह ने इससे दुश्मनी किया, तुम भी इससे दुश्मनी। फिर सगे भाई भी दुश्मन हो जाते हैं, सगी औलाद दुश्मन हो जाती है, बीवी दुश्मन हो जाती है। हाँ, आसमानों से मोहब्बतें और दुश्मनियाँ चलती है। ये जमीन अल्लाह की है, इसमें किसी की नहीं चलती, अल्लाह की चलती। कल फिर कल हमारे अपने औलादों पर, हमारे अपने भाइयों पर, हमारी अपनी जमीनों पर, जमीन हमारी है और अल्लाह नहीं आ रहा। अब्बा खेती करते थे बहुत आता था, अब नहीं आता। दुकान अब्बा की थी तो बहुत कमाई होती थी, अब बेटे के हाथ में ही कमाई खत्म हो गई। एक साल पहले बहुत अच्छी कमाई थी, एक साल के बाद उसी दुकान ने कर्जदार बना दिया। पहले एक साल ने मालदार बना दिया था, दूसरे साल ने कर्जदार बना दिया। ये सब अल्लाह की तरफ से आसमानों पर से होता है। जब गलत रुख की जिंदगी होती है तो अल्लाह पाक इन सब चीज़ों में हालात लाते हैं। फिर हमारी जात में भी हमारी नहीं चलती। देखो हम सब, हम ये चाहें कि हमको शुगर ना हो तो क्या हमारे चाहने से शुगर चली जाती है? हम ये चाहें प्रेशर ना हो तो क्या हमारे चाहने से प्रेशर चला जाता है? हम ये चाहें कि हमारे जिस्म में कोई बीमारी ना आए तो हमारे न चाहने से क्या बीमारी चली जाती है? हमारे न चाहने के बावजूद शुगर भी हो रही है, प्रेशर भी हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो हमारी जात पर भी हमारी नहीं चलती। ये सारी चीज़ों को समझना है ताकि हम पाबंदी वाली जिंदगी सीखें। दुनिया में इंसान अपने आप को आजाद समझता है कि कोई बात नहीं, मुझे जैसा करना है करूँ, मुझे कौन पूछने वाला है। ना ना सोने वाली अल्लाह की आंखें सारी चीज़ें देख रही है और हर किए का बदला भुगतना पड़ेगा। इसलिए दीन की मेहनत के रास्ते से ये समझना और समझाना है। हर आदमी दीन की मेहनत के रास्ते से दीन समझदार बने, दीनदार बने, पाबंद बने और पाबंद बनकर पाबंदी वाली जिंदगी सीखे। अगर ये उसने कर लिया तो बस फिर तो इसके मज़े आ जाएंगे, ऐसे मज़े उसके आएंगे कि अल्लाह की मदद उसके साथ ज़िंदगी में शामिल आ जाएगी। हाँ, आपने फजल जिक्र में पढ़ा होगा, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा बंदा मुझे दिल में याद करता है, मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करता है तो मैं उनसे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में उसको याद करता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ एक बालिश आता है तो मैं दो बालिश आता हूँ, वो मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं दो हाथ आता हूँ, और फिर वो मेरी तरफ चल कर आता है मैं दौड़ कर आता हूँ। कि अल्लाह की रहमत, ये सारा मतलब मैं आता हूँ का मतलब अल्लाह की रहमत आती है। हाँ, फिर किताबों में आता है कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखे, मैं उसका हाथ पैर बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करें, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चले, अल्लाह की मदद शामिल हो जाए। फिर अल्लाह पाक सारी मखलूक में हमारी मोहब्बत दिलों में भर देंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इनके लिए मोहब्बत भर देते हैं, सयजअलुहुर्रहमान वुद्दा, कि सारी मखलूक इनसे मोहब्बत करेंगे, अपने भी, पराए भी, घर के भी, बाहर सब लोग इनको चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, इनके पीठ के पीछे इनके लिए दुआएं करेंगे, ये सब के लिए दुआ की जाएगी और सब इनके लिए दुआएं करेंगे और बड़ी खैर इनके लिए आएगी। ये फरमाबरदारियों पर होता है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में इसके चर्चे नहीं हैं, इसलिए हमें इन बातों का यकीन नहीं आता। अम्बिया के ज़माने में, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन बातों के चर्चे हर मस्जिद में रोज़ होते थे। रोज़ मर्द इस चर्चा को सुनते थे, औरतें रोज़ाना इन चर्चों को सुनती थी। मस्जिद से ये चर्चे घरों में जाते थे और घर के मर्द और घर की औरतें सारे इन चर्चों में ऐसे लगते थे कि भाई करने के काम क्या हैं, अल्लाह किन कामों से राज़ी होते हैं, न करने के काम कौन से हैं, अल्लाह किन कामों से नाराज़ होते हैं। ये चर्चे इतने होते थे और अल्लाह का खौफ इतना ज़िंदगियों में आ जाता था कि हर आदमी अपने आप को पाबंद बनाता था। जब आदमी अपने आप को पाबंद बनाता था तो फिर अल्लाह की मदद है उनके साथ शामिल हल होते थे। अब हमारे माहौल में, हमारे माशरे में ये चर्चे मस्जिदों में भी ख़त्म हो गए। एक बस तालीम होती है, उस तालीम में थोड़ी देर बाद होती है। ये चर्चे हमारे घरों में भी ख़त्म हो गए, हमारे घरों में ये चर्चे ख़त्म हो गए, घरों में भी चर्चे नहीं है। बस एक 5 मिनट फजल अमल की तालीम घर में होती है, उस बहाने ईमान की आखिरत के चर्चे होते हैं। और जिन घरों में तालीम नहीं होती वो घर वाले सोचें कि हम सुबह से शाम तक 24 घंटे में क्या 5 मिनट अल्लाह रसूल की बात करते हैं, सिर्फ 5 मिनट। कि ये मुबारक चर्चे हमारे घरों से ख़त्म हो गए, हमारे घर में और बेईमान के घर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कि हमारे घर में आखिरत के तस्करे ख़त्म, मरने के तस्करे ख़त्म, मरने के बाद की ज़िंदगी के तस्करे ख़त्म, अल्लाह किन कामों से राज़ी होते हैं उसके तस्करे ख़त्म, किन कामों से अल्लाह नाराज़ होते हैं उन सब चीज़ों के तस्करे ख़त्म हो गए, कि सारी चीज़ों के तस्करे ख़त्म हो गए। कि इन तस्करों के ख़त्म होने की वजह से, इन तस्करों के ख़त्म होने की वजह से ये बातें ही हमारे घरों से खाली होंगी। ये मुबारक दिन की जो मेहनत है उसके ज़रिए से ये समझना और समझाना मकसूद है कि हम माहौल को देखकर या मोहल्ले का जो रिवाज है उसको देखकर न जिए, वरना अल्लाह के वहाँ से हम बख्शे नहीं जाएंगे, देखा देखी न जिए। अगर हमने ये करने की चीज़ें शुरू नहीं की और न करने की चीज़ों के से नहीं बचे तो फिर कभी भी हम पकड़े जाएंगे, अल्लाह की तरफ से पकड़ के कोई भी शक्ल आ जाएगी। इसलिए इस मुबारक दिन की मेहनत के रास्ते से हर माहौल में, हर जगह पर ये फिक्रों को ज़िंदा करना चाहा जाता है कि मस्जिद में इसकी फिक्रें हों। रोज़ाना हमारा एक एक मर्द मस्जिद के अमाल से जुड़े, मस्जिद के अमाल से जुड़कर मस्जिद में जो बात कही जाती है उन फिक्रों के साथ वो रोज़ाना अपने कारोबार में जाए, वो अपने घर में जाए, वो अपने दोस्त अहबाब में उसी फिक्रों के साथ जाए। हर घर में ये फिक्रें ज़िंदा हो जाए, इसके लिए इस मुबारक दिन के रास्ते से बात कही जा रही है कि हर घर के लोग तालीम के हलकों को ज़िंदा करें और आखिरत के तस्करे करें, 6 सिफात के मुजाकरे करें, ताकि हर घर का एक एक आदमी इन चीज़ों का तासुर ले और करने की चीज़ों को करने वाला ही बने। मस्तूरात भी इसकी फिक्र आ जाए, इसके लिए हर हफ्ते मोहल्ले की तालीम का अमल ज़िंदा किया गया। मर्दों के लिए हफ्ते में एक मरतबा गश्त का अमल और औरतों के लिए हर हफ्ता एक मरतबा तालीम का अमल, ताकि मर्द उस गश्त के ज़रिए से अपने फिक्रों को बनाएँ, अपनी सोच को बनाएँ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ जिएँ। ये महीने में 3 दिन जाएँ ताकि इनकी फिक्रें बदलें, इनके जज्बात बदलें, अच्छी ज़िंदगी जीने वाले बने। और मस्तूरात भी अपने तालीम के हलकों के ज़रिए से ये इस एहसास के साथ जीने वाली बने। और आज़ीज़ा बहनों, फिर इस तालीम के हलकों के रास्ते से हर औरत इस फिक्र को अपने घर में लेकर जाए। हाँ, ये घर में इन चीज़ों का चर्चा ज़िंदा करें हम। क्यों? कि हमारा जो घर होता है, घर वो घर एक आदमी का नाम नहीं है, घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, ये सारे मिलकर एक घर बनता है। अगर घर का एक आदमी फिक्रमंद हो गया, घर के 10 मेंबर हैं, एक आदमी फिक्रमंद हुआ, दूसरे 9 फिक्रमंद नहीं हुए, तो एक आदमी तो रहमतों को खींचने की मेहनत में लगा है और 10 रहमतों को धक्का दे रहे हैं। और बच्चे जो बनते हैं घर के और नस्ल, वो मदरसे में नहीं बनेंगे, मस्जिद में नहीं बनेंगे, वो घर में बनेंगे। 24 घंटे में से 2 घंटे मदरसे में जाएगा, 22 घंटे तो बच्चा घर में रहता है। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाएंगे तो कितनी देर, एक नमाज में 15-20 मिनट लगेगी, तो 5 नमाजों में 1.5 घंटा होगा, बस वो इतनी देर में मस्जिद में जाएगा। तो मर्द भी घर में होता है और बच्चे भी घरों में होते हैं। जिसका घर बन जाएगा उसके घर के सारे लोग बन जाते हैं, जिसका घर बन गया उसके घर के सारे लोग बन गए। और घर जो बनता है वो घर की औरत से बनता है, घर की औरत से। इसीलिए किताबों में आता है कि घर किसका नाम है, कि घर में घर की खातून को घरवाली कहते हैं, कि वो घर के मालिक होती है। हमारे उर्दू में उसको यूं कहते हैं, घर की मलका, घर की रानी होती है। हाँ, और बच्चे जो बोली बोलते हैं वो माँ की बोली बोलते हैं। हमारे वहाँ गुजराती में कहावत है, किसी को पूछना हो तुम्हारी जबान कौन सी है, तो ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जबान कौन सी है, ये पूछते तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। मातृभाषा मतलब तुम्हारी माँ की बोली कौन सी है। कोई ऐसा नहीं पूछता तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है, तुम्हारे बाप की बोली कौन सी, कोई ऐसा नहीं पूछता, क्योंकि बच्चे माँ की बोली बोलेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, माँ की बोली कौन सी है, कोई फादर टंग नहीं पूछता। अरबी में हम कहते हैं तुम्हारी लुगतुल उम, माँ की जबान कौन सी है, ये नहीं कहते बाप की जबान। हाँ, फारसी में कहते हैं तुम्हारी मादरी जबान, पिदरी जबान कोई नहीं बोलता। तो माँ बन गई तो वो घर बन जाता है, माँ के बनने पर घर बनता है। हाँ, इसलिए हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक औरत का बनना एक घराने का बनना है, एक मर्द का बनना एक मर्द का बनना है, और एक औरत का बनना एक घराने का बनना है। हजरत ये फरमाते थे कि एक औरत बन गई तो वो अपनी पूरी नस्ल को बना देगी, अपने पूरे खानदान को बना देगी, अपनी औलादों को, पोतों पर पोतों को, नवासों को, सबको बनाएगी। हजरत फरमाते थे मर्द की दीनदारी उसके दरवाजे तक होती है और औरत की दीनदारी घर के अंदर तक होती है। घर के अंदर अगर दीनदारी लानी है तो औरत को दीनदार बना दो, घर दीनदार बन जाएगा। इसीलिए कहने वाले ये कहते हैं कि जिस घर की औरत बन गई वो घर बन गया, और जिस घर की औरत नहीं बनी उस घर को कोई नहीं बना सकता, वो घर गया। उसका मर्द चाहे कितना भी बड़ा बुजुर्ग बन जाए, उसके घर में आग लग जाएगी, उस घर को कोई नहीं बना सकता। औरत का बनना इतना बड़ा बड़ी बात होती है। घर आदमी के जज्बात के बदलने की जगह घर होता है और घर औरत से चलता है। इसलिए मर्दों से जैसे मर्दों में मेहनत होती है, ऐसे आप बहनों में भी मेहनत होती है। क्या आप अपने आप को ऐसा ना समझें कि बस ठीक है तालीम का हल्का है सुन लिया, ना, आपके ऊपर पूरे पूरे घराने हैं, आपके ऊपर पूरी नस्ल है। आप मोहल्लों में देखो कि जिन घरों की औरतें फिक्रमंद हैं उनके बच्चे भी फिक्रमंद होंगे, उनकी बच्चियाँ भी फिक्रमंद होंगी, और जिन औरतों की जिन घरों की औरतें बेफिक्र हैं उनके घरों की बच्चियाँ भी बेफिक्र होंगी। जिन घरों की औरतें घरों में होती है उनकी बच्चियाँ भी घरों में होती है, और जिन घरों की औरतें उठले पर बाहर होती है उनकी औरतें भी बाहर होती है। जिन घरों की औरतें बाजार में होगी उनकी बच्चियाँ भी बाजार में होगी। उन घरों के बच्चे माँ जो करती होगी वो उनके बच्चों में मुंतकिल होता होगा, देख लेना। अगर माँ घर रखी है तो उसकी बेटियाँ भी घर रखी है। हाँ, जो माँ के सिफात होंगे वो बेटियों के सिफात, वो बच्चों के सिफात, और फिर घर में आने वाली बहू उसकी माँ के डगर पर जाएगी। इसलिए जैसे मर्दों में इसकी फिक्र दिलाई जाती है, ऐसे औरतों में भी इसकी फिक्र दिलाई जाती है। अल्लाह करे कि हम और आप फिक्रमंद होकर इन चीज़ों को समझने वाले बने। हाँ, ये तालीम के हल्कों के रास्ते से एक बात समझाई जा रही है कि मर्द भी समझें औरतें भी समझें, और समझकर ये इसका एहसास करें कि ये चीज़ मेरे से मुतालिक है, करने के ये काम और ये न करने के काम। अगर हमने इन चीज़ों को नहीं किया तो ये चीज़ें हमें ले डूबेगी। हमारे माशरे में बड़े बड़े न करने के काम हो जाते हैं और हम अनजान होते हैं, हालांकि एक एक चीज पकड़ का जरिया बन सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल अल्लाह के हुकूक है, अल्लाह के हुकूक में ईमान है, अब खुदा ना करे ईमान के अलावा का एक जरा बराबर कोई बोल बोलता है, शिर्क वाला बोल बोलता है, अल्लाह के गैर से होने को समझ रहा है, वो उसी वक्त अल्लाह की निगाह से गिर जाएगा। अल्लाह के वहाँ सारे गुनाह माफ होते हैं, शिर्क का गुनाह अल्लाह के वहाँ माफ नहीं। अब आदमी को जब इसका पता नहीं होता तो पता नहीं किन किन दरगाहों पर और किन किन कब्रों पर और किन किन बड़ों के पास और किन किन छुमंतर वालों के पास ऐसा शिर्क कर बैठता है कि वो बेईमान की मौत मरता है। कि जब जिंदगी में शिर्क दाखिल हो गया और अल्लाह के ईमान पर ईमान दाखिल नहीं रहा, कि जब अल्लाह के गैर को बोला जाता है और अल्लाह के गैर से नफे नुकसान को समझा जाता है तो ईमान जिंदगी से निकल जाता है। लोगों के नाम लोगों के लिस्ट में तो वो ईमान वाला मरता है और अल्लाह के लिस्ट में वो बेईमान हो जाता है, उसने शिर्क किया। ये अल्लाह के अहकाम में से बड़ा हुक्म, अल्लाह के अहकाम में से बड़ा हुक्म नमाज का है। अगर एक आदमी नमाज में आ गया, पाबंदी से नमाज वाला बना, अल्लाह को हमारे नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह इस नमाज के रास्ते से देखते हैं कि अल्लाह की कितनी बात मानने वाला है। किताबों में आता है कि जो नमाज में आ गया अल्लाह उसका जिम्मेदारी ले ले। ओ हो, अल्लाह किसी की जिम्मेदारी ले ले, बात हो गई, उसके काम पूरा हो गया, ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी में है। और किताबों में आता है कि नमाज का अमल किसी की जिंदगी से निकल गया वो अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। अब अगर वो अल्लाह की जिम्मेदारी में नहीं है, अब रह क्या गया? वो तो बर्बाद और हलाक हो जाएगा, कभी भी किसी झांसे में आ जाएगा, कभी भी ये पकड़ा जाएगा, कभी भी कुछ भी इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की जिम्मेदारी इससे खत्म हो गई। एक एक अमल इतना भारी होता है, ईमान, नमाज, रोजा। अब रोजे अल्लाह को हमारे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन एक मिसाल के रोजा है। अब रोजे में किताबों में आता है कि अल्लाह इतने खुश होते हैं, अल्लाह कहते हैं रोजा मेरे लिए, रोजे का बदला मैं हो जाऊंगा। ओह, जिसका बदला अल्लाह हो जाए उसका क्या कहना। ज़कात, अब लोग ये कहते हैं ज़कात ना, ज़कात के अमल के जरिए से अल्लाह पाक उसके बाकी माल की हिफाजत कर लेते हैं, बाकी माल को पाक कर लेते हैं। एक एक अमल हमारे नफ़े के लिए है। हज का अमल हमारे गुनाहों से पाकी का जरिया है। किताबों में आता है जब वो तवाफ़ ज़ियारत करता है, आदमी हज कर लिया और हज के बाद तवाफ़ ज़ियारत करता है, एक फरिश्ता उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, ओ भले आदमी, अब तो नई जिंदगी गुजार, अब तो ऐसा हो गया जैसे आज ही बच्चा पैदा हुआ हो। हाँ, एक एक अमल हमारे नफ़ों का है। अब खुदा ने अगर इसको नहीं किया गया तो फिर उसे उल्टा असर पड़ेगा। हाँ, ऐसे अल्लाह के बंदों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक कैसे, अल्लाह के बंदों के हुकूक, अल्लाह के बंदों के हुकूक समझाए, माँ का हक समझाया, बाप का, औरत को शोहर का, शोहर को बीवी का, पड़ोसियों का, औलाद का, मुसलमानों का। अब अगर इसने खुदा ना करे चुके कि तो अगर इसने इसको सही कर लिया तो उसका अच्छा बड़ा बदला मिलेगा। हाँ, कि अगर उसने अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत की तो उसके औलाद उसकी अच्छी खिदमत करेगी। खुदा ना करे उसमें सुस्ती की तो कोई बात नहीं, ये भुगतने के लिए तैयार रहेगी, ये मिटाया नहीं जाएगा, ये भुगतने के लिए तैयार रहेगी, बस उम्र वाला होने दे। एक औरत है, उसने अपनी सास के साथ गलत हरकतें की है तो कोई बात नहीं, इसको सास बनने दो, उस वक्त तक ये मरनी नहीं है जब तक इसको ये भुगत ना ले। मेरे पास कोई आते हैं और शिकायत करते हैं कि हमारी सास ऐसा करती है या बहू ऐसा करती है, तो फौरन पूछता हूँ कि तुमने अपनी जवानी में अपनी बहू के साथ क्या किया था, या तुमने अपनी सास के साथ क्या हरकत की थी। वो तैयारी कर लेना, उसके बगैर मरना नहीं है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कटकल बच्चों होता हो, हर एक को अपना भुगतना है, हर एक को अपना करना है, एक जरा बराबर भी मिटाया नहीं जाएगा। हाँ, अल्लाह के वहाँ हर चीज़ का वक्त तय है। अगर हमने किसी पड़ोसी के साथ बुरा किया है तो बस तैयारी कर लें कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होगा, कोई ना कोई बात हमारे साथ होगी। अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मगर अल्लाह की मर्जी के दरख्त का पत्ता नहीं हिलता। हर आदमी को उसका भुगतना है। अरे, हमने किसी की गीबत की, मान लो गीबत की, तो उसकी इतनी सख्त सजा। गीबत का क्या मतलब, कि एक आदमी के अंदर कोई बुराई है, उस बुराई के हमने तस्करे किए अपने घर, अब कोई नहीं सुनता, वो सुन रहा है जिसको मैंने कहा और मैं कहने वाला, हम दो ही जानते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों ने इसको लिख दिया। अब वो गीबत हमने की एक आदमी की बुराई में जान की, वो बुराई उस आदमी में 10% थी, हमने उसको बढ़ाकर 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 100% बोले, तो इसमें 10% बुराई थी तो हमने 10% उसकी गीबत की, और दूसरा जितना ज्यादा बोले हैं वो 90% उस पर हमने इल्ज़ाम लगाया, इसको तोहमत कहते हैं। किताबों में आता है कि तोहमत की सज़ा ये है, तोहमत की सज़ा कि अल्लाह पाक जब तक उस आदमी को उस बुराई में मुब्तला नहीं करेंगे जिस जो बुराई उसने लोगों के लिए बयान किया, तब तक अल्लाह इसको मौत नहीं देगा। हाँ हाँ, ये जो हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमारे घर के लोग बुराइयों में मुब्तला होते हैं, इसके बहुत सारे असबाब ये भी है कि हमारे घरों में लोगों के तस्करे होते हैं, तेरी मेरी राम तुरान फला ऐसा फला ऐसा। हाँ, वो अल्लाह के बंदे बंदियाँ हैं, उस पर अल्लाह ने उसके अबों पर अल्लाह ने पर्दा डाला है। अब जब लोग उसके पर्दों को खोलते हैं तो अल्लाह पाक उसको उसी गुनाह में मुब्तला करते हैं। और किताबों में आता है किसी के ऐप ना खोलो, कि अगर कोई किसी के ऐप को किसी में कोई बुराई है तो अगर किसी ने उसकी बुराई खोली तो अल्लाह पाक उसको घर बैठे हुए जलील कर देंगे, फिर अल्लाह उसके ऐपों को खोलने पर लग जाएंगे और उसको उसके घर में बैठे हुए अल्लाह उसको जलील करेंगे। बाजार में उसको नहीं जाना, मार्केटों में, मॉल, उसके घर के घर में अल्लाह उसको जलील कर देंगे। आप देखो, घर घर रास्तों पर आ चुके, घर की बातें रास्तों पर आ गई, ये क्यों, कि घर इन चीज़ों से पाक नहीं है। इसलिए कहते हैं घरों को इन चीज़ों से पाक किया जाए और घरों में अमाल किए जाए कि हमारे करने के अमाल हमारे करने के अमल के घर की चार दीवारी में ईमानियत को बोला जाए, आखिरत को बोला जाए, मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी को बोला जाए, अल्लाह की मदद और नुसरत वाले अमल को बोला जाए। हाँ, और खुदा ने तेरे को ऐसी लाया नहीं हो तो फौरन लगा मार जाए, ओ भाई ये नहीं बोलना, ओ बहन ये नहीं बोलना, फौरन घरों को अमल से आबाद किया जाए कि घरों में बस सबसे बड़ा अमल नमाज का है कि अपने वक्त पर नमाज को पढ़ी जाए, नमाजों को वक्त पर पढ़ी जाए। हाँ, मर्द भी और औरतें भी वक्त पर नमाजों के पाबंद बने। मर्द मस्जिदों में फर्ज नमाज पढ़ें, मर्दों को हुक्म यह है कि वो नफले और सुन्नतें घर में आकर पढ़ें, लेकिन जो मर्द भूल जाते हैं उनको नहीं, जो याद रखकर घर में पढ़ें तो उनको हुक्म यह है कि वो घर में आकर पढ़ें। क्यों? ताकि जिस घर में तुम्हें 10 घंटे रहना है, 12-15 घंटे रहना है, उस घर का माहौल बने, तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे देखें, ओ अब्बा नमाज पढ़ रहे हैं, मम्मी नमाज पढ़ रही है, हमारी दीदी नमाज पढ़ रही है, बहन नमाज पढ़ रही है, अब वो छोटे बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। घर में कुरान पढ़ें, घरों में कुरान पढ़ना के घर आबाद हो जाएंगे। किताबों में आता है जिन घरों में तस्बीह पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, वो आसमान वालों के नज़दीक ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। हाँ, और वो घर में जादू भूत नहीं रहते, जिस घर में जोर जोर से घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिक्र किया जाता है, नफलें पढ़ी जाती हैं, जिस घर में असर हो उस घर का होता है ना जिन भूत का असर, मुझे तो ताज्जुब होता है, उस घर में ज़ोर से कुरान पढ़ना चाहिए। तिलावत को रोज़ पढ़ो और ज़रा ज़ोर से पढ़ो, ना महरम बाहर ना सुने, घर में आवाज़ जाए इतना पढ़ो। हाँ, लेकिन किसी को नींद ख़राब नहीं करनी, किसी की नमाज में डिस्टर्ब नहीं करना, खाली वक्त में जब कोई ना हो तो कुरान पढ़ना चाहिए, उससे उस घर को अल्लाह पाक साफ कर देगा। घर में ताकत वाली चीज़ कुरान शरीफ है। हर हाफिज कुरान रोज़ाना 3 पारे, गैर हाफिज रोज़ाना 1 पारा पढ़े, और उसके साथ सुबह शाम की हमारी तस्बीहात की पाबंदी हो। हाँ, सुबह शाम की तस्बीहात 3 तस्बीह हमारे अल्लाह का जिक्र किए करें, 3रा कलमा पढ़ें, सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये रोज़ाना पढ़ा जाए। 1 तस्बीह दुरूद पाक की, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के हम पर एहसानात हैं, सुबह 1 तस्बीह और शाम को 1 तस्बीह दुरूद पाक की हों, और 1 तस्बीह अल्लाह से माफ़ी मांगने की, इस्तग़फ़ार की हों। हम कसूरवार गुनहगार हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो नमाज सीख कर पढ़ें, सीख कर नमाज पढ़ें, सीख कर कुरान पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, पर्दों की पाबंदी करें, पर्दों की पाबंदी, पर्दा फ़र्ज है, बेपर्दगी हराम है। हाँ, किताबों में आता है कि जब औरत बेपर्दा होती है शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। हाँ, ये शैतान फिर उसके पीछे लग जाता है, इसलिए पर्दों की पाबंदी हो, ये बैठकें हमारी ना हों, होटलों पर बैठना ना हो, बाजारों में जाना ना हो, इज्जत वाले लोग ये सब चीज़ें नहीं करते। हाँ, ख़ानदानी लोग ये हरकतें नहीं करते, जो ख़ानदानी होते हैं वो अपने आप को ऐसे छुपाते हैं जैसे औरतें सोने चांदी को छुपाते हैं, जेवरात को छुपाते हैं, ख़ानदानी लोग अपनी इज्जतों को ऐसे महफूज कर लेते हैं। ख़ानदानी लोग होटलों पर नहीं बैठते, ख़ानदानी लोग बाज़ारों में नहीं होते, ख़ानदानी लोग कह नहीं लगाते, चर्चे नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो हल्के लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, हल्के लोग कह लगाते हैं, टोले बनते हैं, बाज़ारों में जाते हैं जो हल्के लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग ये नहीं करते हैं, इज्जतदार लोग ये नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश ये हो कि हमारे घरों में एक अच्छा माहौल बनाया जाए। हम कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे, लेकिन हम मरें तो हमारे पीछे हम अपनी औलादों को मुसलमान छोड़कर मरें, मुसलमान छोड़कर मरने का अमल, अपने घर के माहौल को ऐसा बनाओ कि हमारे पीछे हमारे बच्चे हमारी मौजूदगी में इन अमाल को करने वाले बन जाएँ, अच्छे बोल बोलने वाले बन जाएँ। घर में जो ऐसी बोली बोली जाएगी उसके बच्चे ऐसी बोली बोलेंगे। मैं बाज घरों को देखता हूँ कि उसका अब्बा जिस तरह बोलता है उसके बच्चे भी ऐसे शोर गलाटा करते हैं, उन घर की औरतें बड़ी जैसे बोलती हैं उनके बच्चियाँ भी ऐसे शोर करके बोलती हैं, दो आदमी बातें करते हैं लेकिन जोर जोर से, कि अम्मा जैसा होती है ऐसा करते हैं। हमारी कोशिश ये हो कि हमारे घर के माहौल को इस तरह बनाया जाए, और घर में इन अमाल करने के साथ साथ इसकी तालीम हो, हमारे घरों में आखिरत के तस्करे, मरने और मरने के बाद की ज़िंदगी के तस्करे, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ये फ़ज़ल अमाल और फ़ज़ल सत्कार की किताब है। रोज़ाना वक्त निकाल कर ये किताब को पढ़ा जाए, 10 मिनट से शुरू करो, 2-3 मिनट फ़ज़ल निकाय साहबा में से, थोड़ा फ़ज़ल नमाज, थोड़ा फ़ज़ल कुरान। ये उन लोगों की किताब, इन लोगों की ज़िंदगी इस किताब में लिखी है जिनसे अल्लाह राज़ी हो गए, वो साहबा की ज़िंदगी है, अल्लाह उनसे राज़ी है। फजाइल सदकात में अगर किसी को अल्लाह ने मालदार बनाया तो वो कैसे रहे, किसी को अल्लाह ने गरीब बनाया वो कैसे रहे, उसका उसके हुकूक हैं। मुसलमान की कितनी इज्जत इकराम है उसके हुकूक हैं। सगा भाई, सगी माँ, सगा बहन, सगे भतीजे, सगे भांजे, सगे रिश्तेदार, सिला रहमी क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी है, वो बड़ी बातें हैं। अगर उसको नहीं समझा गया तो फिर उसमें कोताही होगी। सगी माँ के साथ कोताही, बाप के साथ कोताही, भाई बहनों के साथ कोताही, सिला रहमी पेट के रिश्तेदारों के साथ कोताही होगी, और फिर वो ऐसे अजाब और मुसीबत को लाएगा वो हरकतें कि फिर भुगतते भुगतते पार नहीं आएगा। किताबों में आता है सिला रहमी तो अल्लाह के अर्श के नीचे होगी, और अल्लाह से कह दिया है अल्लाह जिसने हमको जोड़ा तो उसको जोड़ और जिसने हमको काटा तो उसको काट दे, अपने रहमत से काट दे। लेकिन जब इसको नहीं समझा जाता तो अक्सर घरों में कतार रहमी होती है, कतार रहमी भाई सगे भाई के साथ कतार रहमी करता है, बहनों के साथ कतार रहमी होती है, हाँ अपने औलाद के साथ कतार रहमी होती है, अपने भाई के औलाद के साथ, बहन के औलाद के साथ कतार रहमी होती है, कि सबके साथ कतार रहमी हुई पड़ी है। अब वो मुसीबतों को ऐसे वक्त लाएगी जब हमको ज़रूरत होगी अल्लाह की मदद की, नुसरत की, हम अकेले छोड़ दिए जाएँ। इसलिए जब इस किताबों को पढ़ा जाएगा तो नमाज कैसे पढ़ना, रोज़े कैसे रखना, कुरान कैसे पढ़ना, ये सारे फ़राइज़ अल्लाह के हुकूक भी और अल्लाह के बंदों के हुकूक, ये हमारे एक घर के आदमी के अंदर ज़िंदा हो जाएंगे। इसलिए अहतमाम के साथ 10 मिनट कम से कम 10 मिनट से शुरू करें। हमारे बुजुर्ग तो फरमाते हैं घर की तालीम आधा घंटा होनी चाहिए। ये 7 किताबें हैं, टोटल 9 किताबें हैं, उसमें से 7 किताबें रोज़ पढ़ने की है। हिकायत सहाबा, हिकायत फजाइल नमाज, फजाइल कुरान, फजाइल तबलीग, फजाइल जिक्र, मुसलमानों की पसली का वाहिद इलाज और फजाइल सत्कार, ये 7 रोज़ पढ़नी है, और फजाइल हज को हज के दिनों में, और फजाइल रमज़ान को रमज़ान के दिनों में। जब ये पढ़ा जाएगा तो रोज़ाना इनकी ज़िंदगी बनती चली जाएगी। इसलिए एक तो घर के माहौल को बनाने के लिए औरतें खुद अपने आप को पाबंद बनाएं पर्दे की, आमाल की, घर में इसका रिवाज डालें, और दूसरा इस तालीम के हलमों के ज़रिए से बच्चों की दीनी जहन बनाएं कि जिस वक्त में घर के सारे लोग जमा हों उस वक्त में तालीम की जाए। हाँ, अच्छी बोली बोले घर में तोछड़ी बोली ना बोले, वरना बच्चे भी तोछड़े हो जाएंगे, घर के मर्द भी तोछड़े हो जाएंगे। घर में अच्छी बादब बोली बोले, लिहाज वाली बोले बोले, सदीक़े की बोली बोले घर में, इसका मुजाहरा। खुदा न करे कोई बच्चा बदतमीजी करे, फौरन माँ प्यार माँ, बेटा ये तुमने क्या बोल दिया, बेटा ये तो मुसलमान नहीं बोलता है, यूं करके जहनसाजी की जाए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब खाने बैठते थे बच्चों को साथ बिठाते थे, और बैठे तो बच्चा इधर उधर हाथ कर रहा था तो कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेटा अपने आगे से खाने का होता है, बेटा अल्लाह का नाम लेकर खाओ, ये अदब घर में सिखाए जाएंगे, हर चीज़ का अदब घर में सिखाया जाएगा। इसलिए इसकी कोशिश करो कि ये हो जाए। जब ये हो जाएगा ना तो तुम्हारा घर नमूना बनेगा, फिर तुम्हारे घर में जितने लोग आएंगे वो तुम्हारे घर का असर लेकर जाएंगे, मेहमान जमात तुम्हारे घर में रुकेगी वो असर लेकर जाएगी, और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें मिलने आएंगे तो देखेंगे कि या अल्लाह हमारे घर में तो बड़े गफलत होती है, ये इनके घर में हम मेहमान गए, इनके घर में माशाल्लाह इनके बच्चे कितने अच्छी बोली बोलते हैं, कितने बादब बच्चे हैं, इनके बच्चे कितनी बादब है, वाह वाह इनका घर कितना पाक साफ, कितना साफ सुथरा है। हमारे घर में कहीं तौलिया पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं चादर पड़ी है, कहीं बस्ता पड़ा है, कहीं चप्पल पड़े हैं, या अल्लाह इनके घर में कितना अदब है। हाँ, अभी हमारे घर में दावत हो रही थी तो हम उस घर में गए तो उनके बर्तन देखकर हमने खाना छोड़ दिया, मैंने कहा खाना ही नहीं खाना, इतने गंदा किचन, या अल्लाह क्या हो जाए, मैंने कहा खाना नहीं खाना है। बाकी आधा ईमान है। हाँ, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं सीखी होती तो बच्चों के गंदे कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, जब बच्चे नापाक रहते हैं या बच्चों के कपड़े नापाक होंगे उस घर में फरिश्ते कैसे आएंगे, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इसलिए घर में नापाक कपड़े हो जाए बच्चों के, वो छोटे बच्चे हैं, चट्टी पेशाब किया फौरन उसको धो दो, साफ कर दो, पहले माएँ ऐसा करती थी, लेकिन अब वो अंदर पहनाते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चे को छोटा सा कुछ पहनाते हैं कितना बड़ा नुकसान, हम नहीं जानते। हर हाल में बच्चों के साथ रहमत के फरिश्ते होते हैं, जब वो बच्चे नापाक हो जाएंगे उन बच्चों के साथ रहमत के फरिश्ते खत्म हो जाएंगे। जिस घर में नापाकी होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और वो पेशाब में तेजाब होता है उसके टट्टी पखाने में तेजाब होगा वो बच्चे को चमड़ी की बीमारी करेगा। हाँ, वो बच्चा तेजाब की वजह से पेशाब का पेशाब के तेजाब से पता नहीं कितनी बीमारियों में मुबतला होता है। हाँ, पहले माएँ ऐसा नहीं करती थी, अभी के मॉडर्न चीज़ों ने ऐसा कर दिया। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, फौरन घर को पाक करें, घर को पाक साफ रखें। हम तो अपने आंगन को भी साफ रखेंगे। हमारे नबी सलाम ने फरमाया कि तुम अपने आंगनों को यहूदियों की तरह गंदा मत रखो, कि गंदे रखना तो यहूदियों की सिफत है, हम आंगन गंदा नहीं करेंगे। अपने घरों को पाक साफ रखोगी, अपने घरों को इनामाल से भर दी तो आपके बच्चे इन्हीं जज्बात के साथ पाकी के साथ बड़े होंगे, और जब आपके घर में और मेहमान आएंगे ना, वो आपके घर की नसरात को लेकर जाएंगे। आप कहो ना कहो, आपके घर की चादर, आपके घर के तकिए, आपके घर का फर्श, आप कोई बात नहीं, हमारे बंदे नहीं है, हमें कोई बात नहीं, साफ तो हम रख सकते हैं, पोता तो लगा सकते हैं, झाड़ू तो लगा सकते हैं, बर्तन गंदे तो नहीं छोड़ सकते, हर चीज सलीके से रखी है, तो ये घर इबरत का निशान बनेगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के घर झोंपड़े थे, लेकिन लोग दीन वहां से लेकर जाते थे। पाक की आधा ईमान है हमारे घरों के नक्शों से घर, और जब घरों में चर्चे होंगे ईमान के आखिरत के, तो इंशाल्लाह जो मेहमान आएंगे उनसे हमारी आखिरत की बातें होगी, आखिरत के चर्चे होंगे। जब मेहमान आते हैं तो लोग बात करते हैं तेरी मेरी ईरान कुरान की, पता नहीं कहाँ कहाँ की, जिस घर में जो होगा उसकी बातें होगी। जिस बर्तन में चाय होगी, जब वो छलकेगा तो चाय गिरेगी, दूध होगा छलकेगा तो दूध गिरेगा, पानी होगा छलकेगा तो पानी गिरेगा, जिस घर में जो होगा वो छलकेगा। अगर अच्छाई की बातें हैं तो वो मेहमान आएंगे तो अच्छाई की बातें छलकेंगे, तो वो मेहमान आपके घर से ईमानियत को आखिरत को लेकर आएंगे। इसलिए अज़ीज़ बहनों, ये जिम्मेदारी वाली ज़िंदगी पर आने के लिए ये मुदाकरे हैं, ये खाली कुछ बातें सुनाकर बात खत्म करने के लिए नहीं है। फिर एक हमारे जिम्मे अपनी ज़ात से दीनदार बनना, और दूसरा खत्मे नबूवत की मेहनत के सदक़े में हर आदमी में ये दीनी फिक्र आए उसकी मेहनत करना है। इसकी तबलीग की जिम्मेदारी हम सब मर्दों पर भी है और आप बहनों पर भी है। हमारे नबी इस्लाम जब हज में तशरीफ ले गए तो हज के आखिरी दिन में फरमाया, अरे लोगो, मैंने तुमको दीन की बात पहुँचाई नहीं पहुँचाई? तो सारे लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सलाम आपने बात पहुंचा दी। अल्लाह के नबी सलाम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, अल्लाह तू गवाह है ना, अरे अल्लाह तू गवाह है ना, अरे अल्लाह तू गवाह है ना। फिर लोगों से कहा कह लो, अब तुम मेरे पास ये मेरी बातें दूसरों तक पहुँचाना, तबलीग का काम करना। तो सारे सहाबा तबलीग के काम में लगे थे, 1,25,000 सहाबा थे। अल्लाह के दिन की मेहनत को लेकर पूरी दुनिया में वो चले फिरे और अल्लाह के दिन का काम किया। उनके चलने फिरने की वजह से आज हमारे वहाँ दीन की मेहनत आई है, दीन आया, दीन की मेहनत आई। अब दुनिया में नबी भी नहीं, सहाबा भी नहीं, तो ये कौन करेगा? हम लोग करेंगे, हम हुजूर की उम्मत में हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मत में हैं, हम करेंगे। इसके लिए अपने घर को दीनी माहौल वाला बनाओ, दीन की मेहनत वाला बनाओ, दाइयाना ज़िंदगी गुजारें। हमारे मर्दों से भी कहें कि तुम्हारे जिम्मे दीन की मेहनत है, तुम 4 महीने लगाओ अल्लाह के रास्ते में, 4 महीनों में जाओ, तुम साल के कम चिल्ले लगाओ ताकि चिल्लों में जाकर तुम्हारी फिक्रें अच्छी बने, और तुम जिन इलाकों में जाओ वहाँ कुछ काम हो। तो मर्दों को 4 महीने भेजें, 40 दिन भेजें, फिर उनको कहो तुम्हें महीने में 3 दिन जाना है, तुम 3 दिन महीने के हफ्ते का तय करके पाबंदी से 3 दिन लगाओ, और हफ्ते में 2 गश करने हैं तो 2 गश करो। मर्दों के 5 काम हैं अपनी मस्जिद में करने के, एक रोज़ाना इनको मशवरे में मस्जिदार जमात में बैठना है। अपने मर्दों से कहो कि तुम सुबह से शाम तक सारे काम करते हो, तुम अल्लाह के दिन की फिक्र में भी 5-10 मिनट मशवरे में बैठो। एक मशवरे में बैठना है मस्जिद में, दूसरा रोज़ाना इनको 2.5 घंटे लगाना है मस्जिद में, हाँ, ताकि वो मोहल्ले में चलें फिरें, मोहल्ले के मुसलमानों की मुलाकातें करें। वो 8-10 घंटे कारोबार में देंगे, 8 घंटे वो आराम करेंगे, 16 घंटे हो गए, 8 घंटे कारोबार के, 8 घंटे आराम के, 16 घंटे हो गए। एक दिन 24 घंटे का होता है तो 16 घंटे हो गए, 8 घंटे उनके अभी बच्चे हैं, उन 8 घंटों में वो कम से कम 2.5 घंटे मस्जिद को दें। तो अपने मर्दों को फिक्र दिलाएं कि तुम्हें रोज़ाना 2.5 घंटे मस्जिद में रहने हैं। फिर उसके बाद हफ्ते में 2 गश करने हैं, एक अपने मस्जिद का गश और एक दूसरे मस्जिद का, जहाँ काम नहीं है वहाँ जाकर दूसरा गश करें। ये 3 काम हो गए। चौथा काम, रोज़ाना 2 तालीम हरे को सुननी है, एक रोज़ाना मस्जिद की तालीम जो उसमें बैठें और रोज़ाना घर की तालीम में ही बैठे हैं, 4 काम हो गए। और 5वां काम, ये महीने में 3 दिन जाएंगे, तो इनको ये तुम तरगीब दो कि अपने दीन की हिफाजत के लिए तुम्हें ये काम करने हैं, 5 काम तुम्हें करने हैं, और अल्लाह हिम्मत दे फिर तुम बेरों के सफ़र में जाओ, अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह के दीन की मेहनत को लेकर दुनिया के मुल्कों में जाओ, ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों में हमारा शुमार हो जाए। तो आप बहने घर में रहकर अपने मर्दों को तैयार करके भेजो, और आप बहने घर में रहकर इन अमल की पाबंदी करोगी तो आप अच्छी बनकर अपने औलादों को अच्छी बनाओ। सबसे पहली मेहनत आपकी अपने घर की है, फिर उसके बाद अपने बच्चों को और अपने घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आओ। हमारे घरों में डांट डपट होती है, धमकाना होता है, बहू को अपना अपना नहीं समझते, बहू को पारके समझते हैं। हाँ, ये पारके नहीं है, ये हमारी बेटी है, तो इसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आकर अपने घर में अच्छा रिवाज दो। देखो, हमारी बेटी तो दूसरे घर में चली जाएगी और वो बेटी को हमारे घर में रहना है। अब हम उस दूसरे घर में जाने वाली बेटी को तो अपनी बेटी कहते हैं और अपने घर में आने वाली को पराई कहते हैं, उसको अपनी समझें, अपनी समझें। हाँ, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, उसके जितने उसके जिम्मे जो काम है वो काम उससे लें, उसके जिम्मे ये हमारे घर के सब काम नहीं होते। उससे उसके दिल में तुम्हारी बुराई आ जाएगी कि मेरी सास मेरे साथ ये करती है जो जानवर करते हैं। वो कुछ बोल नहीं सकेगी, लेकिन वो दिल में तुम्हारा कांटा घुस जाएगा, और जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो तुम्हारा साथ नहीं देगी जब हमारा जुल्म उसके साथ होगा। हाँ, हम एक गाँव में गए, उस गाँव में बहू को सास के भी कपड़े धोने के, ससुर के भी धोने के, उनकी बेटियों के भी धोने के, उनकी बेटी दूसरे घर में रहती है, जब जुमा ईद के इतवार के दिन या जुमा के दिन आएगी वो मैंने कपड़े लेकर आती है और यहाँ उस बहू से धुलवाती है। अजाब है, ये जुल्म है। देवर के जेठ के कपड़े, ये जुल्म है। हाँ, हम एक गाँव में गए, उस गाँव में ये रिवाज है, हमने देखा है वो रिवाज। और फिर वो माँ यूं कहती है कि हमारी बेटियां दूसरे घर में जाकर ऐसा काम नहीं करती, तो क्या वो करती है तो इससे भी तुम ऐसा करवाओगे, ये जुल्म है। अल्लाह की पकड़ को दावत देने, अल्लाह के गुस्से को दावत देने वाली ये चीजें हैं। इसलिए ये चीजें, अपने घर में ऐसा अच्छा माहौल बनाओ कि अल्लाह पाक एक सुकून को भर दे घरों में, तो इन आमाल के साथ घरों को भरना है। फिर उसके बाद हमारे घर की मेहनत के साथ हमारे मोहल्ले की मेहनत हमारे जिम्मे है। जैसे मर्द मोहल्ले की मेहनत करेंगे, ऐसे आप बहनें भी अपने मोहल्ले की मेहनत में शरीक हो जाओ। हुजूर के आप हुजूर के उम्मत में आप भी हो, जैसे ये उम्मत, इस उम्मत के मर्द हुजूर की मेहनत के जिम्मेदार हैं, ऐसे आप बहनें भी जिम्मेदार हो। खत्मे नबूवत के सदक़े में तबलीग की मेहनत जैसे इस मर्दों के जिम्मे हैं, ऐसे आप औरतों के जिम्मे भी है। तो आप औरतें घर में जितने लोग आपसे मिलने आए उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो, और जब उनका इकराम और खिदमत के साथ उनको दीन की बात सुनाओ, जिनसे आखिरत के तस्करे कुछ करो। हमारे घरों में लोग आते हैं ना, हम इधर उधर की सारी बातें करते हैं, अल्लाह रसूल की बातें नहीं करते। अपने घरों में अल्लाह रसूल की बातें इनसे करें। फिर उसके साथ हफ्ते में एक मरतबा तालीम का अमल होता है। अब आप अंदाज़ा करो कितनी बहनें हमारे मोहल्ले में हैं, 50 मकान हैं, 25 मकानों की बहनें आई है। वो कौन से 25 मकानों की बहनें नहीं आई, वो जब ये बातें नहीं सुनेंगी तो उनके अंदर ये फिक्र कहाँ से आएगी। तो आप बहनें इसकी फिक्र करो कि एक घर की बहन एक घर की फिक्र ले लें कि मैं अपने पड़ोसन को लेकर आऊँगा इन हफ्ते। जब आप इस तरह की फिक्र करोगे तो 50 के 50 मोहल्ले की बहनें जितनी भी है मकानों की, वो सब आ जाएगी। उसके साथ तुम एहसान का मामला करो, यहाँ से जाकर उससे दोस्ती करो, उसका इकराम करो, उसको तुम दोस्त बनाकर फिर आइंदा हफ्ते उसको प्यार मोहब्बत से तालीम के हल्के में लाओ, ताकि वो इस अमान को सुने, एहसास ज़िम्मेदारी को सुने और ज़िम्मेदारी वाली ज़िंदगी जीने पर ही पढ़ें। हमारे मोहल्ले की फिक्र हो गई। उसके बाद जैसे मर्द जमातों में जाते हैं, आप बहनें भी जमातें बना बनाकर फिर 3-3 दिन जाओ। जैसे अभी आपके यहाँ संग्रामपुर की जमात 3 दिन की आई है, ये दीन सीखने के लिए आई है, तो हम अपने मोहल्ले में इनको ठहराएं, उनका इकराम करें और उनको दीन सिखाएं। उनको जो आता है उससे हम सीखें, हमें जो आता है हम उनको सिखाएं। ऐसे ही 3 दिन की हमारी जमातें बनकर हम अपने अतराफ़ के देहातों में जाएँ, अपने ज़िले में जाएँ, वहाँ जाकर मेहनत में लगें, ताकि हमारे सारे देहातों में अल्लाह दीन की मेहनत को जिंदा कर दें। 2-3 मरतबा 3 दिन लगे, फिर हम 10 दिन जाएंगे, 10 दिन हमारे सूबे में जाएंगे, कोई और ज़िले में जाएंगे, फिर 1-2 मरतबा 10 दिन लग जाएँ, फिर 40 दिन जमात में जाएंगे, हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे, फिर 1-2 मरतबा 40 दिन लग जाएँ, फिर हम बाहर मुल्क में 2-2 महीने के लिए जाएंगे। जैसे बाहर देश जाते हैं ना, बाहर देश फॉरेन मर्द जाते हैं, ऐसे औरतें भी फॉरेन जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जमात जा रही है फॉरेन, पोर्टुगल जा रही है, पोर्टुगल, ये यूरोप का मुल्क है, यूरोप। आपके मोहल्ले की भी एक औरत है, हाजी यामिन समौल, आप सब इनको जानते हैं, ये समौल की वाड़ी है, ये यहाँ रहते हैं हाजी यामिन समौल, वो भी आज जा रहे हैं, 5 जोड़े जा रहे हैं हमारे ज़िले की एक जमात जा रही है पोर्टुगल। हाँ, औरतें जा रही हैं, औरतें, और एक जमात जाएगी ऑस्ट्रेलिया अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह, औरतों की जमात ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ओहो, ऑस्ट्रेलिया। अजीज़ा बहनों, आप भी अल्लाह के दिन की मेहनत कर सकती हो। अपने मर्दों से कहो कि हमें खर्चा कम दो, लेकिन हम ये असबाब के दर्जे में पैसे जमा करेंगे और हम अल्लाह के दिन की मेहनत को लेकर दुनिया के इलाकों में जाएंगे, ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह हमसे खुश हो जाएं, अल्लाह के नबी हमसे खुश हो जाएं। हाँ, हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे खड़ा होना है, उनके हाथ से जामे कौसर पीना है, उनकी सिफारिश का हकदार बनना है।
तो आप अपने मर्दों का जहन बनाओ कि तुम भी अल्लाह के रास्ते में जाओ, हम भी अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। मर्द तो हर महीने 3 दिन जाएगा, औरतें हर 2 महीने के बाद 3रे महीने जाएगी, औरतें हर 3रे महीने 3 दिन जाएगी, और फिर हर 2-3 मरतबा 3 दिन लग जाए तो साल में 1 मरतबा 10 दिन लगाएगी, और हर 3रे साल में वो चिल्ले में जाएगी, 2 साल घर में रहें, 3रे साल 40 दिन में जाएँ। वाजिदा बहनों, अगर तुमने ये कर लिया तो इंशाल्लाह अपनी ज़ात को भली बनाते हुए सारी दुनिया को भली बनाने का काम करने वाले बन जाओ। जिस दिन इंशाल्लाह हमारा इंतकाल होगा ना, तो हमारा दफ्तर बंद नहीं होगा। जब आदमी अपना अपना दीन करता है तो वो जिस दिन मरता है उसका दफ्तर बंद हो जाता है, लेकिन जो आदमी खुद दीनदार बनकर लोगों को दीनदार बनाने की मेहनत करने लगता है तो उसके हाथ से जितने लोग दीन वाले बनते हैं, जितने लोग दीन पर आते हैं, तो अजीजा बहनों वो मर भी जाता है ना तो उसका दफ्तर चालू रहता है। जितनों को ऊपर उसने दीन की मेहनत की, वो दीन का जितना काम करेंगे इसके नाम में हमारे में वो आता रहेगा। तो ये भलाई की बात है कि हम अपने पीछे दीन की मेहनत छोड़कर मरें, दीन के काम करने वाले छोड़कर मरें। इसलिए सब नियत करो, इरादे करो कि हर बहुत मरतबा हमने बयान सुने हैं, लेकिन आज हम तौबा करें कि आज तक जो अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी हम अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर अल्लाह की माफ़ी मांग ली तो इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे। और अब आज से करने के काम करने हैं, नमाज हमारी न छूटे, कुरान की तिलावत न छूटे, तस्बीह न छूटे, घर में अच्छे अखलाक न छूटे, मोहल्ले वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, पड़ोसियों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, छोटी छोटी बातों में हम पड़ोसियों के साथ न झगड़ा करें। हाँ, पड़ोसी हमारे पड़ोसी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हुकूक समझाए हैं। हम अपने पड़ोसियों को तकलीफ न दें, रास्तों को तंग न करें। ये हम जो कठेरे घर के आगे बनाते हैं ना, होटले बनाते हैं, कठेरे बनाते हैं, उससे घर तंग, रोड तंग हो जाते हैं। 20 फीट का जो रास्ता है, 20 फीट का रास्ता ये गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बनाया है। हम थोड़ी देर के लिए घर में आगे, घर के आगे दीवार बना देते हैं कि रास्ते की दीवार है, ये रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज़ है। हाँ, ईमान वाले की निशानी है कि वो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटाता है। हम तकलीफ खड़ी कर देते हैं, लोग हमको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह के वहाँ हमारा मामला ख़राब हो जाएगा। मेरी दरख्वास्त यह है कि कोई अपने घर के आगे कठेरे ना बनाए, बल्कि जिनके बन चुके हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए इनको ख़त्म कर दें, इनको तोड़ दें। हमें हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, हम दुनिया को कोई नहीं देखना, दुनिया क्या कहेगी, हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। ये हमने ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, हम ज़ालिम लोग हैं, हम ग़ासिब लोग हैं, हमने ज़मीनों पर कब्ज़े कर लिए हैं। ये अल्लाह की मखलूक की ज़मीन, हम पता नहीं हमारा मरना कैसा होगा। हाँ, जो अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देते हैं, मौत के वक्त उनको कलमा भी नसीब नहीं होता है। हम इससे डरें कि हमारा गले में कलमा ना ढक जाए, इसलिए हम अपने घर के आगे किसी को तकलीफ ना दें। 20 फुट का रास्ता है, 20 फुट, अब 20 फुट का रास्ता है, हमने 3 फुट हमने ले लिया, सामने वाले ने 3-4 फुट ले लिया, अब रास्ता 12 फीट का रह गया, 3 फुट वहाँ चला गया, 3 फुट, फिर उसके आगे हमारी गाड़ी रोकते हैं, उसकी गाड़ी होंडा रुकेगी, अब वो रास्ता 10 फुट का हो जाएगा, फिर वो बकरी बांधी, भैंस बांधी, फिर उसके बाद मुर्गी का पंजरा रखा, वो पूरा घर रास्ता ख़त्म हो गया। लोग इसमें हमको कुछ नहीं बोलते कि भाई इसको बोलेंगे ये तो भाई झगड़े वाले लोग हैं, जैसे कुत्ता काटता है ऐसे ये लोग काट लेते हैं, ये सांप की तरह डसते हैं, तो भाई इनको कुछ नहीं कहना। वो बेचारे मारे शर्म के, मारे इज्जत के खामोश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह सबको देखता है, अल्लाह के वहाँ सहरे को भुगतना है। ये जुल्म होता है, हमारे घरों में फिर हमें चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, मेरी बात को बुरा ना समझें, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहनें हैं, मैं आपकी दुनिया भी अच्छी देखना चाहता हूँ, मैं आपके आखिरत भी अच्छी देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अल्लाह की दुनिया भी अच्छी बना दे, आखिरत भी अच्छी बना दे, ये उसके असबाब हैं। जुल्म का बदला जुल्म है, मैंने शुरू में ही आपको कहा था, अल्लाह काफिरों को बर्दाश्त कर लेते हैं, जालिमों को नहीं बर्दाश्त करते, इसलिए इन सब बातों की अच्छी करने की नीयतें करो, असाइन करो। मुसलमान इसको कहते हैं आँख खुली सुबह हुई, सुबह होते ही हमारी सवेरा हो गया, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, इसको भर के भटका नहीं कहते। जब आँख खुली तभी से हम अपना टर्न ले लें और वापस अच्छी ज़िंदगी पर आ जाएं। इसलिए बैठो, हल्के लगाओ और नीयतें करो कि इंशाल्लाह घर की तालीम भी शुरू करनी है, और घर की तालीम के साथ मोहल्ले के अमाल में भी लगना है, मर्दों को भी अमाल में लगाना है, और इसके साथ साथ अपने अच्छे साइन करने हैं। तुम भी अल्लाह के रास्ते का सफ़र करो, अपने मर्दों को भी अल्लाह के रास्ते का सफ़र करवाओ, ताकि अल्लाह पाक खुश होकर हमारी दुनिया भी अच्छी कर दें और अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी कर दें। घरों में अमाल शुरू करते हैं, मोहल्ले की मेहनत में लगना है, और अल्लाह हिम्मत दे इंशाल्लाह फिर सफ़र भी करते हैं और अपने मोहल्ले वालों के साथ भी अच्छा रहना है। अल्लाह पाक हमारा जीना भी अच्छा कर दे, अल्लाह हमारा अच्छा मरना भी अच्छा कर दे, और अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, दुनिया आखिरत का बेहतरीन ज़खीरा बनाए, अल्लाह हमारे लिए उनको वबाले जान बनने से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें ज़ालिम बनने से बचाए, क्योंकि जुल्म का बदला बहुत खतरनाक है। अल्लाह हमें ظلم کرنے سے بچائیں اور اس میں ہلکے لگاؤ. ہماری تعلیم والی بہنیں بھی اور ہماری جماعت کی بہنیں بھی ہلکے لگائیں اور جو باتیں ہوئیں اس کا ملاقہ کریں اور سب کی تشکیلیں کریں ان کے مردوں کی بھی اور ان کی عورتوں کی بھی, اور پھر جو نام آئے وہ ہم کو مسجد میں بھیج دیں. ہم لوگ اپنی دعا پڑھ کر مسجد میں جاتے ہیں, آپ اپنے پورا کام کر لیں تشکیل کا, اس کے بعد اپنی دعا پڑھ کر رخصت ہو جائیں. اللہ آپ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بھلائی کرانے کا اس کو ذریعہ بنائے اور اللہ ہماری مغفرت کا اس کو ذریعہ بنائے. اب آپ ہلکے لگاؤ اور کام کرا.